नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम चल रहे हैं 2500 साल पीछे, प्राचीन यूनान, एक ऐसे विचारक के पास जिनके विचार आज भी हमें चौंका देते हैं, डेमोक्रिटस।
हाँ, डेमोक्रिटस, बिल्कुल, जिन्हें अक्सर दुनिया हंसता हुआ दार्शनिक कहती है, द लाफिंग फिलोसोफर।
हाँ, ये नाम बड़ा दिलचस्प है। क्यों हंसते थे वो, इस पर भी आएंगे हम।
जरूर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके दुनिया को देखने के नजरिए को दिखाता है कहीं ना कहीं।
बिल्कुल, और उनका सबसे बड़ा योगदान, जिसके बिना शायद आधुनिक विज्ञान की कहानी ही कुछ और होती, वो है उनका परमाणुवाद, एटमिज्म का सिद्धांत।
सोचिए जरा, ये विचार कि ये पूरी कायनात, हर चीज, मतलब ठोस, तरल, गैस, यहां तक कि हमारे ख्याल भी, बस न दिखने वाले छोटे छोटे कणों से बने हैं, अविभाज्य कण, परमाणु।
कमाल है उस जमाने में ये सोचना, जब दुनिया जवाब ढूंढ रही थी देवी देवताओं में, मिथकों में।
और डेमोक्रिटस कह रहे थे कि नहीं, सब कुछ पदार्थ है और उसके अपने नियम हैं, भौतिक नियम।
शायद इसीलिए कुछ लोग उन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं।
हाँ, ये उपाधि थोड़ी बड़ी जरूर है, पर इसके पीछे वजह है, उनका जो भौतिकवादी यांत्रिक नजरिया था वो अपने समय से सदियां आगे था।
वाकई, तो आज की हमारी चर्चा इसी अनोखे दार्शनिक के इर्द गिर्द रहेगी। हम कोशिश करेंगे उनके जीवन को समझने की, उनके विचारों की गहराई में उतरने की,
और ये जानने की कि आज भी 2500 साल बाद उनकी बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा।
जरूर, सबसे पहले वो समय और वो जगह समझना जरूरी है जहां डेमोक्रेटस सोच रहे थे, लिख रहे थे।
हाँ, कॉन्टेक्स्ट।
बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं लगभग 460 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व के आसपास की। ये प्राचीन यूनान का क्लासिकल दौर था, शास्त्रीय काल,
जिसे एथेंस का स्वर्ण युग भी कहते हैं। पर डेमोक्रेटस तो एथेंस से नहीं थे।
नहीं, यही दिलचस्प बात है, वो एथेंस से दूर एबडेरा नाम के शहर में जन्मे थे। ये थ्रेस में एक यूनानी बस्ती थी, आज के बुल्गारिया के पास, तो वो एथेंस के जो मुख्य दार्शनिक केंद्र थे उनसे थोड़े अलग थे।
अच्छा, और माहौल कैसा था उस वक्त, मतलब बौद्धिक माहौल?
उथल पुथल वाला। एक तरफ तो देखो, पेलोपोनेशियन युद्ध जैसी राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, दूसरी तरफ दर्शन में एक नई लहर थी। ये प्री सुक्रातिक दर्शन का समय था,
यानी सुकरात से पहले के विचारक।
हाँ, ये लोग मिथकों, मिथोस से हटकर तर्क और अवलोकन, लोगोस से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे। परमेनिडीज, एनेक्सागोरस, एम्पिडोक्लीस, ये सब उसी दौर के नाम हैं।
और इसी माहौल में डेमोक्रेटस के विचार पनपे। सुना है उनके गुरु लुसिपस का उन पर बड़ा असर था।
बहुत गहरा असर। माना जाता है कि परमाणुवाद का जो मूल विचार है वो सबसे पहले लुसिपस ने ही दिया था।
अच्छा।
हाँ, और डेमोक्रेटस ने उस विचार को लिया, उसे विकसित किया, उसे एक पूरा सिस्टम बनाया, उसे तर्क की गहराई दी।
और उनके समकालीन प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब भी तो थे।
जी हाँ, बिल्कुल, और ये जानना महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेटस के विचार इन बड़े नामों, खासकर प्लेटो और अरस्तु से बहुत अलग थे, बिल्कुल विपरीत।
टकराव था, मतलब
जबरदस्त टकराव, और यही टकराव डेमोक्रेटस के विचारों को और भी खास बना देता है। वो उस समय की मुख्यधारा के खिलाफ खड़े थे।
अच्छा, तो अब थोड़ा उनके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अमीर परिवार से थे वो।
जी, एबडेरा के एक काफी संपन्न परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन दौलत को उन्होंने अलग तरह से इस्तेमाल किया।
कैसे?
उन्होंने अपनी जो विरासत थी उसका बड़ा हिस्सा यात्राओं पर खर्च किया, ज्ञान की खोज में।
यात्राएं? कहाँ कहाँ की यात्राएं?
किंवदंतियां तो कहती हैं कि वो मिस्र गए, फारस गए, शायद भारत और इथियोपिया तक भी पहुंचे।
क्या बात है उस जमाने में।
हाँ, सोचिए, अलग अलग सभ्यताओं के विद्वानों, पुजारियों, गणितज्ञों से मिले, उनसे सीखा। ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए उनमें कितनी प्यास थी, कितना जुनून था। ये यात्राएं सिर्फ घूमना नहीं थी, ये उनके दर्शन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करना था।
और शायद इन्हीं यात्राओं के बाद उनकी मुलाकात ल्यूसिपस से हुई होगी,
ऐसा माना जाता है। और ल्यूसिपस का शिष्य बनना उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। परमाणु सिद्धांत को विकसित करना, ये उनके जीवन का मिशन बन गया।
और लिखने में भी माहिर थे, आपने कहा 70 ग्रंथ।
हाँ, बहुत विपुल लेखक थे। अफसोस की बात है कि आज हमारे पास उनका एक भी काम पूरा नहीं बचा है, सब टुकड़ों में ही मिलता है।
ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। खैर, चलिए अब सीधे उनके सबसे क्रांतिकारी विचार पर आते हैं, परमाणुवाद, एटमिज्म। ये है क्या आखिर, आसान शब्दों में?
आसान शब्दों में कहें तो डेमोक्रेटस के अनुसार इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में असल में सिर्फ दो ही चीजें हैं।
दो चीजें, कौन सी?
एक, परमाणु। यूनानी शब्द एटमोस से, जिसका मतलब है जिसे और काटा ना जा सके, अविभाज्य। और दूसरा, शून्य, यानी खाली जगह, वॉइड, जिसमें ये परमाणु घूमते हैं, टकराते हैं, जुड़ते हैं।
बस परमाणु और शून्य, बाकी सब कुछ?
बाकी सब कुछ इन्हीं दो चीजों का नतीजा है। पहाड़, पानी, हवा, तारे, जानवर, इंसान, सब कुछ।
कैसे? मतलब अलग अलग चीजें कैसे बनती हैं फिर?
उनके हिसाब से परमाणु अनंत हैं, संख्या में भी और प्रकार में भी। वो सब ठोस हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, नष्ट नहीं होते। फर्क सिर्फ उनके आकार में, उनकी बनावट में, और वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस व्यवस्था में जुड़ते हैं, इसमें है। जैसे आप सोचिए, अक्षर होते हैं ना, क ख ग,
हाँ,
थोड़े से अक्षर हैं, पर उन्हें अलग अलग तरह से जोड़कर हम अनंत शब्द, अनंत कहानियां बना सकते हैं। बस वैसे ही अलग अलग तरह के परमाणु अलग अलग तरह से जुड़कर ये सारी विविधता भरी दुनिया बनाते हैं।
तो ये तो पूरी तरह से भौतिकवाद हुआ, मटीरियलिज्म, हर चीज पदार्थ है।
बिल्कुल, डेमोक्रेटस शायद इतिहास के पहले पक्के भौतिकवादी थे।
तो फिर आत्मा, हमारे विचार, चेतना, ये सब क्या है?
उनके नजरिए से ये भी परमाणु हैं। आत्मा, वो मानते थे, बहुत ही महीन, चिकने, गोल परमाणुओं से बनी है, जो हमारे शरीर में फैले हुए हैं।
और मरने के बाद?
मरने के बाद ये परमाणु बिखर जाते हैं, बस कोई अमर आत्मा नहीं, सब कुछ भौतिक।
तो फिर दुनिया में जो कुछ भी होता है, उसका कारण क्या है? कोई भगवान, कोई प्लान?
डेमोक्रेटस के लिए जवाब था नहीं, कोई दैवीय योजना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सब कुछ परमाणुओं की आपसी टक्कर, उनके जुड़ने, अलग होने की एक तरह की यांत्रिक आवश्यकता, मैकेनिकल नेसेसिटी का नतीजा है।
मतलब जैसे घड़ी चलती है अपने पुर्जों से?
हाँ, कुछ वैसा ही, एक कॉस्मिक मशीन की तरह। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, कुछ भी यूं ही संयोग से नहीं होता, हर चीज किसी कारण और आवश्यकता से होती है।
लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है, परमाणुओं की गति के नियमों से, तो फिर हमारी इच्छा का क्या? फ्री विल, हम जो चुनते हैं?
ये एक मुश्किल सवाल है उनके दर्शन में, जिसे नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म की समस्या कहते हैं।
हाँ,
डेमोक्रेटस ने इस पर सीधे सीधे बहुत कुछ नहीं कहा। उनका जोर शायद इस बात पर ज्यादा था कि ब्रह्मांड को बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से समझा जा सकता है। बाद में एपिक्यूरस जैसे दार्शनिकों ने इस समस्या से निपटने की कोशिश की।
अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बनावट की बात। अब ज्ञान पर आते हैं। हम दुनिया को जानते कैसे हैं? इस पर क्या कहते थे डेमोक्रेटस? उनकी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी।
ये भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने दो तरह के ज्ञान में फर्क किया, एक वो जो हमें हमारी इंद्रियों से मिलता है, देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर।
हाँ, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन डेमोक्रेटस ने इस ज्ञान को थोड़ी कम अहमियत दी। उन्होंने इसे अवैध या बैस्टर्ड ज्ञान तक कहा।
अरे, ऐसा क्यों?
उनका मानना था कि इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। जो हमें महसूस होता है, जरूरी नहीं कि वो चीजों की असली सच्चाई हो। जैसे कोई चीज हमें मीठी लगती है,
हाँ,
तो डेमोक्रेटस कहेंगे कि मीठापन उस चीज का अपना गुण नहीं है, ये तो तब पैदा होता है जब उस चीज के परमाणु हमारी जीभ के परमाणुओं से एक खास तरीके से टकराते हैं।
अच्छा, तो रंग, गंध, ये सब?
ये सब भी असली गुण नहीं है, ये परमाणुओं की बनावट और उनके हमारी इंद्रियों के साथ संपर्क का नतीजा है। ये व्यक्तिपरक हैं, सब्जेक्टिव हैं।
तो फिर असली, वैध या लेजिटिमेट ज्ञान कौन सा है?
वो ज्ञान जो बुद्धि से मिलता है, तर्क से। बुद्धि ही इंद्रियों से मिली जानकारी के पार जाकर असलियत को पकड़ सकती है। और असलियत क्या है?
परमाणु और शून्य।
बिल्कुल, वही दो चीजें। बाकी सब जिसे हम महसूस करते हैं, वो एक तरह की राय है, ओपिनियन है। असली ज्ञान बुद्धि से आता है, जो परमाणुओं और शून्य की सच्चाई को समझती है।
वाह, ये तो सच में दुनिया को बिल्कुल अलग तरह से देखना है। अच्छा, भौतिकवाद हो गया, ज्ञान हो गया, अब उनकी नैतिकता, एथिक्स। अगर सब कुछ परमाणु है, तो जीवन का लक्ष्य क्या? कैसे जीना चाहिए?
उनके नैतिक दर्शन का केंद्र है एक शब्द, यूथीमिया।
यूथीमिया, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ठीक ठीक अनुवाद करना मुश्किल है, पर आप कह सकते हैं मन की शांति, स्थिरता, एक तरह की अंदरूनी खुशी, कल्याण, वेलबींग।
और ये मिलती कैसे है? क्या मजे करने से, ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने से?
नहीं, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेटस ने शारीरिक या बाहरी सुखों पर जोर नहीं दिया, उन्होंने जोर दिया अंदरूनी सुखों पर, मानसिक बौद्धिक।
तो यूथीमिया पाने का रास्ता क्या है?
रास्ता है संयम, मॉडरेशन, मतलब किसी भी चीज की अति से बचना, शांति, ट्रैंक्विलिटी, मन को शांत रखना, तर्क के अनुसार जीना, ज्ञान हासिल करना और जीवन की जो सीमाएं हैं, जो हकीकतें हैं, उन्हें स्वीकार करना।
अच्छा, शायद इसीलिए उन्हें हंसता हुआ दार्शनिक कहा गया, क्योंकि वो दुनिया की भागदौड़ और इंसानी मूर्खताओं को देखकर दुखी होने के बजाय,
हाँ, शायद उन्हें एक शांत संतुलित नजरिए से देखते थे, थोड़ी दूरी से, शायद थोड़ी हंसी के साथ, रोने से बेहतर हंसना समझा होगा उन्होंने।
उनका मानना था कि असली खुशी पैसे या सोने में नहीं,
नहीं, बल्कि आत्मा की अच्छी हालत में है, मन की शांति में है, संतुष्टि में है।
उनकी रचनाओं की बात करते हैं अब। आपने बताया था कि करीब 70 किताबें लिखी पर कोई बची नहीं।
हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। उनके विचार हम तक पहुंचे हैं दूसरे लेखकों के जरिए।
जैसे?
जैसे अरस्तु। उन्होंने अपनी किताबों में डेमोक्रेटस के विचारों का जिक्र किया है, हालांकि ज्यादातर आलोचना करने के लिए।
अच्छा।
फिर डायोजीनीस लायर्टियस जैसे जीवनी लिखने वाले थे, जिन्होंने उनके बारे में लिखा, उनके कथन दर्ज किए। इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर हम डेमोक्रेटस को समझने की कोशिश करते हैं।
क्या कुछ किताबों के नाम पता है हमें?
हाँ, कुछ नामों का जिक्र मिलता है, जैसे द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, मेगास डाई कॉस्मोस। ये शायद उनका सबसे मुख्य काम था, जिसमें उन्होंने अपने परमाणु वाले ब्रह्मांड का पूरा मॉडल समझाया था।
ओके।
कहते हैं ये शायद उन्होंने अपने गुरु ल्यूसिपस के साथ मिलकर लिखी थी। फिर ऑन द नेचर ऑफ मैन थी, जिसमें आत्मा और हमारी इंद्रियों पर उनके भौतिकवादी विचार थे। एथिकल राइटिंग्स थी, जो यूथीमिया पर फोकस करती थी। ऑन नेचर, ऑन चेयरफुलनेस, ऐसी कई रचनाएं थी। गणित और विज्ञान पर भी लिखा उन्होंने, पर सब कुछ खंडित है।
अब जरा उनकी तुलना करते हैं उस दौर के दूसरे बड़े नामों से। प्लेटो से इनकी इतनी क्यों नहीं बनती थी?
सीधी सी बात है, दोनों के दर्शन एकदम उल्टे थे। प्लेटो मानते थे कि असली दुनिया विचारों की है, अभौतिक रूपों की है, जो शाश्वत हैं।
और डेमोक्रेटस?
उनके लिए सब कुछ भौतिक था, परमाणु और शून्य, बस। तो जमीन आसमान का फर्क था। कहते हैं प्लेटो को डेमोक्रेटस इतने नापसंद थे कि वो चाहते थे उनकी सारी किताबें जला दी जाएं।
अरे बाप रे।
हाँ, और प्लेटो ने अपनी किसी भी रचना में डेमोक्रेटस का नाम तक नहीं लिया, सोचिए।
और अरस्तु, उन्होंने तो जिक्र किया है।
हाँ, अरस्तु ने जिक्र किया, पर सहमत कम ही थे। अरस्तु को डेमोक्रेटस का शून्य यानी खाली जगह का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था प्रकृति शून्य से नफरत करती है, नेचर अबहोर्स अ वैक्यूम।
और
अरस्तु को यह भी समझ नहीं आया कि अगर कोई पहला चलाने वाला या भगवान नहीं है, तो परमाणुओं में ये गति, ये मूवमेंट आया कहां से? अरस्तु हर चीज में एक उद्देश्य, टीलोलॉजी ढूंढते थे, जबकि डेमोक्रेटस का ब्रह्मांड बिना किसी उद्देश्य के नियमों से चल रहा था। ये बात अरस्तु को हजम नहीं हुई।
लेकिन क्या किसी ने उनके विचारों को अपनाया भी, आगे बढ़ाया?
हाँ, बाद में एपिकुरस आए। उन्होंने डेमोक्रेटस के परमाणुवाद को लिया और उसे अपने दर्शन का आधार बनाया। हालांकि उनका दर्शन थोड़ा अलग था, वो शोक को ज्यादा महत्व देते थे।
अच्छा।
और एपिकुरस ने वो नियतिवाद वाली समस्या का हल निकालने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि परमाणु सीधी रेखा में चलते चलते कभी कभी हल्का सा, बिना किसी कारण के झुक जाते हैं।
स्वर्व।
हाँ। इसी झुकाव से थोड़ी अनियमितता आती है।
अच्छा।
और इंसानी इच्छा के लिए जगह बनती है।
तो इन सब बातों से लगता है कि डेमोक्रेटस वाकई अपने जमाने से बहुत आगे थे, खासकर आज के विज्ञान को देखें तो।
बिल्कुल। और यहीं से उनकी विरासत और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता का सवाल उठता है। ये हैरानी की बात है कि इतने मौलिक विचारक होने के बावजूद सदियों तक उनके विचारों को एक तरह से दबा दिया गया।
क्यों? अगर वो इतने वैज्ञानिक सोच वाले थे।
मुख्य कारण था प्लेटो और अरस्तु के दर्शन का दबदबा। उनका दर्शन, जिसमें आत्मा की अमरता, एक उद्देश्यपूर्ण ब्रह्मांड जैसी बातें थीं, वो बाद में आने वाले ईसाई और इस्लामी धर्मों को ज्यादा रास आया। डेमोक्रेटस का जो शुद्ध भौतिकवाद था, जिसमें भगवान या अमर आत्मा के लिए कोई जगह नहीं थी, उसे खतरनाक माना गया, नास्तिक समझा गया।
तो फिर वापसी कैसे हुई उनके विचारों की?
वापसी हुई यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति के समय, 16वीं-17वीं सदी में, जब गैलीलियो, बॉयल, न्यूटन जैसे लोग ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह समझने लगे।
तब उन्हें डेमोक्रेटस में एक साथी मिला।
हाँ, एक तरह से उन्हें डेमोक्रेटस के विचारों में एक तर्कसंगत ढांचा मिला। पदार्थ, गति, कार्यता, दुनिया को बिना किसी अलौकिक शक्ति के सहारे समझने का एक तरीका।
तो आधुनिक विज्ञान का जनक कहना शायद उतना गलत भी नहीं।
हाँ, इस मायने में कि उन्होंने एक ऐसा सोचने का तरीका दिया जिसने बाद के वैज्ञानिकों को रास्ता दिखाया कि दुनिया को उसके अपने नियमों से समझा जा सकता है।
और आज 21वीं सदी में डेमोक्रेटस कहाँ है?
देखिए, आज का एटॉमिक थ्योरी बहुत आगे निकल गया है। हम जानते हैं कि एटम अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन वो जो मूल आइडिया था कि दुनिया की हर चीज बुनियादी कणों से बनी है, उसका श्रेय तो डेमोक्रेटस को ही जाता है। आज पार्टिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी ऑफ माइंड भी कहीं ना कहीं उनके सवालों से जूझ रहे हैं।
जैसे
चेतना क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, जो कि परमाणु से ही बने हैं, उनकी एक्टिविटी का नतीजा है? क्या मन और पदार्थ एक ही चीज हैं? ये सब डेमोक्रेटस के भौतिकवाद से जुड़े गहरे सवाल हैं जो आज भी जिंदा है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं, वो उनके विचारों की तेजी दिखाते हैं, जैसे ये वाला, परमाणु और खाली स्थान के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, बाकी सब राय है।
बिल्कुल, ये उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। एक तरफ है असलियत, परमाणु और शून्य, वस्तुनिष्ठ सच। दूसरी तरफ है हमारा व्यक्तिपरक अनुभव, हमारी राय। दुनिया असल में क्या है और दुनिया हमें कैसी लगती है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है।
और ये वाला, परंपरा से मीठा, परंपरा से कड़वा, परंपरा से गरम, परंपरा से ठंडा, परंपरा से रंग, लेकिन वास्तव में परमाणु और शून्य।
फिर वही बात, ये सारे गुण जो हमें महसूस होते हैं, स्वाद, तापमान, रंग, ये चीजों के अंदर नहीं होते, ये तो परमाणुओं के हमारी इंद्रियों से टकराने का नतीजा है। असली चीज तो परमाणु और शून्य ही है।
नैतिकता पर उनका ये कथन कितना साफ है। प्रसन्नता मनुष्य के लिए जीवन का लक्ष्य है। शांति की यह अवस्था सुखों पर नियंत्रण रखकर और जीवन में उचित माप का पालन करके प्राप्त की जाती है।
यही है यूथिमिया। सच्ची खुशी बेलगाम इच्छाओं में नहीं, बल्कि संयम में है, संतुलन में है, समझदारी में है।
और ये कथन तो आज के मटेरियलिस्टिक जमाने में भी बहुत सोचने लायक है। खुशी संपत्ति में नहीं और सोने में नहीं रहती, आत्मा खुशी का निवास स्थान है।
भौतिकवादी होते हुए भी उन्होंने खुशी का स्रोत बाहर नहीं, अंदर माना, मन की अवस्था को। और एक और मजेदार है, बहादुर वो है जो न केवल अपने दुश्मनों पर बल्कि अपनी खुशियों यानी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है।
मतलब सेल्फ कंट्रोल ही असली बहादुरी है।
बिल्कुल।
अब कुछ हल्की फुल्की बातें। उनका हंसता हुआ दार्शनिक होना, ये हेराक्लिटस के ठीक उलट था, जिन्हें रोता हुआ दार्शनिक कहते थे।
हाँ, ये एक क्लासिक जोड़ी मानी जाती है। हेराक्लिटस दुनिया के दुखों पर, इंसानी अज्ञान पर रोते थे। डेमोक्रेटस इंसानी मूर्खताओं पर, बेकार की चिंताओं पर, आडंबरों पर हंसते थे।
उनका हंसना निराशा का नहीं था।
शायद नहीं, शायद वो एक गहरी समझ से आता था, चीजों को थोड़ा दूरी से, हल्केपन से देखने की क्षमता।
वो कहानी भी तो है कि उनपे केस हो गया था कि सारी जायदाद यात्राओं में उड़ा दी।
हाँ, और कहते हैं उन्होंने कोर्ट में अपना बचाव कैसे किया, अपनी किताब द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम पढ़कर।
सच में?
हाँ, और जज इतने इम्प्रेस हुए कि न सिर्फ केस खारिज किया बल्कि उनके ज्ञान की खोज की तारीफ भी की। ये होती है ज्ञान की ताकत।
गणित में भी उनका योगदान था, ज्योमेट्री में।
जी हाँ, शंकु, कोण और पिरामिड के आयतन निकालने के तरीकों पर उन्होंने काम किया था।
और वो अंधा होने वाली बात कि खुद को अंधा कर लिया था,
वो एक किंवदंती ज्यादा लगती है। शायद उनके गहन चिंतन को दिखाने का एक तरीका ऐतिहासिक तथ्य कम ही लगता है।
और उनकी किताबों का खो जाना, ये आज भी एक सवाल है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या जानबूझकर उनके विचारों को दबाया गया?
ये बहस चलती रहती है। क्या प्लेटो और उनके मानने वालों ने उनके भौतिकवाद को मिटाने की कोशिश की, कहना मुश्किल है। पर ये जरूर है कि उनका जो कठोर नियतिवाद था, उसने हमेशा सवाल खड़े किए हैं, क्या हमारे पास सच में कोई आज़ादी है?
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में डेमोक्रेटस से हम क्या मुख्य बात लेकर जा सकते हैं?
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है उनकी वो बौद्धिक हिम्मत। बिना किसी भगवान, बिना किसी अलौकिक शक्ति के, दुनिया को सिर्फ उसके अपने नियमों से समझने की कोशिश करना, ये आज भले ही आम लगे पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच थी।
और ये भी कि कैसे सिर्फ सोचने से, दार्शनिक अटकलों से भी कभी कभी आने वाले हजारों साल बाद की वैज्ञानिक खोजों की झलक मिल सकती है, जैसे परमाणु का आइडिया।
बिल्कुल। और उन्होंने ये भी दिखाया कि एक भौतिकवादी नजरिया भी नैतिक हो सकता है, जीवन जीने का एक सार्थक तरीका बता सकता है। उनका यूथेमिया का विचार आज भी कितना प्रासंगिक है।
तो अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ,
आज जब विज्ञान ने परमाणुओं के अंदर की दुनिया भी खोल दी है, जब हम ब्रह्मांड को और बेहतर जान रहे हैं, तब डेमोक्रेटस का वो बुनियादी विचार कि सब कुछ बस कणों और खाली जगह का एक अंतहीन खेल है, हमारी अपनी चेतना के बारे में, हमारी आज़ादी के एहसास के बारे में और इस विशाल, शायद बिना किसी उद्देश्य वाले ब्रह्मांड में अर्थ खोजने की हमारी कोशिशों के बारे में क्या कहता है? क्या ये हंसने की बात है या गहरी चिंता की? इस पर सोचिएगा जरूर। क्लोजिंग नरेशन।